एक और बड़ी खूबसूरत सूरत हमारे सामने है और उसका नाम है सूरत नमल। नमल च्युंटी को कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान में च्युंटी के नाम पर सूरत लाकर बता दिया कि इन्नल्लाह ला यस्तहयी यद्रिब मसलम मा बऊदा, कि अल्लाह ताला को मच्छर से भी छोटी चीज़ की मिसाल देते वक्त कुछ नहीं होता। इस पूरी सूरत में बड़े खूबसूरत तरीके से हमें शिर्क और तौहीद का फ़र्क भी पता चलेगा और इसमें एक नई स्टोरी आ रही है, क्योंकि पिछले अंबिया की स्टोरीज तो आप कई दफ़ा सुन चुके, लेकिन जहां आपको हज़रत सुलेमान और चींटियों की कहानी मिलेगी। आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौसीन, तिलका आयातुल कुरआनि व किताबे मुबीन। तौसीन, ये आयात हैं कि कुरान और किताबे मुबीन की हिदायत और बशारत इन ईमान लाने वालों के लिए जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं। खुद से पूछिए, क्या ये खुशखबरी मुझे मिल रही है? अगर ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह मिलेगी। फिर वो ऐसे लोग हैं जो आखरत पर पूरा यकीन रखते हैं। हकीकत है कि जो लोग आखरत को नहीं मानते, इनके लिए हमने उनके करतूतों को खुशनुमा बना दिया, इसलिए वो भटकते फिरते हैं। समझ आया आपको? जो आखरत नहीं मानेगा वो दुनिया में इधर उधर फिरेगा और वो खुश होते हैं अपने गलत काम करके। ये वो लोग हैं जिनके लिए बुरी सजा है और आखरत में यही सबसे ज्यादा खसारे में रहने वाले हैं। और ए नबी, बिला शुबा तुम ये कुरान एक हकीम और अलीम हस्ती की तरफ से पा रहे हो। 3 सेकंड तक गौर कीजिए। ये वही कुरान है जो नबी के दिल पे उतरा था। आज मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मैं इसी कुरान को पढ़ रही हूँ, इसी को सुन रही हूँ, और अल्लाह ताला हमें इसकी कदर की तौफीक अता फरमाए। इस काल मूसा लि अहलिही इन्नी आनस्तु नारा, इन्हें इस वक्त का किस्सा सुनाओ जब मूसा ने अपने घर वालों से कहा कि मुझे एक आग सी नजर आई, मैं अभी या तो वहां से कोई खबर ले आता हूँ या कोई अंगारा चुन लाता हूँ ताकि तुम लोग गर्म हो सको। वो जो इस आग में है और जिसके माहौल में है और पाक है, अल्लाह ताला सब जहान वालों का परवरदिगार। ए मूसा, इन्नहुवल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम, ये मैं हूँ अल्लाह, जबरदस्त और दाना। और तू फेंक दे जरा अपनी लाठी को। जो ही मूसा ने देखा कि लाठी सांप की तरह बल खा रही है तो वो पीठ फेर कर भागे और पीछे मुड़कर भी न देखा। कहा, ए मूसा डरो नहीं, मेरे हजूर रसूल डरा नहीं करते, यानी अल्लाह के हुक्म से जब गलत चीजें छोड़ो तो घबराओ नहीं, इल्ला ये कि किसी ने कसूर किया हो, फिर अगर बुराई के बाद इसने भलाई से अपने फेल को बदल लिया तो मैं माफ करने वाला मेहरबान हूँ। जरा अपना हाथ अपने गिरेबान में तो डालो, चमकता हुआ निकलेगा बगैर किसी तकलीफ के। ये 2 निशानियां 9 निशानियों में से हैं फिरौन और उसकी कौम की तरफ ले जाने के लिए, और वो बड़े बदकिरदार लोग थे। मगर जब हमारी खुली खुली निशानियां लोगों के सामने आई तो उन्होंने कहा, ये तो खुला जादू है। उन्होंने सरासर जुल्म और गुरूर की राह से इन निशानियों का इनकार किया, हालांकि दिल इनके कायल हो चुके थे। अब देख लो कि मुफसिदों का क्या अंजाम हुआ। पूरे वाक्य में क्या सबक है? कि अल्लाह ताला के हुक्म पे हर वो चीज छोड़नी पड़े जो अल्लाह को पसंद नहीं और हमें बड़ी पसंद है, तो दिल की खुशी से इंसान छोड़े, क्योंकि उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से वही चीज आपके लिए खैर और रहमत का जरिया बनती है। बाज़ जिन चीजों को हम अपने लिए सहारा समझ रहे होते हैं वो चीज़ें हमारे लिए नुकसान का जरिया होती हैं। तो इंसान की समझ इतनी छोटी है कि उसको खुद भी नहीं पता कि उसके हक में क्या चीज़ बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। अब इसके बाद जहाँ से हजरत सुलेमान और दाऊद का जिक्र है, याद रखिए कि ये वो दो नबी हैं जिनके दौर में बनी इसराइल का उरूज शुरू हुआ था। पीछे बात हो चुकी है डिटेल से। दीन और दुनिया दोनों जमा कर दी गई थी इनकी सूरत में, जिसका फायदा क्या हुआ कि लोगों को हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात करते हुए इस बात का धड़का नहीं लगा रहता कि भाई ये तो दीनदार हैं, ये तो दुनियादार हैं। अल्लाह ने इनको अनयूजुअल किस्म के मौजज़ात दिए। अगर बिल्कुल इसको आज समझिए, मैं अपनी लफ्जों में सोच रही हूँ तो इंजॉय भी करूंगी, कि जैसे अगर आज के दौर में हजरत दाऊद और सुलेमान आते तो उनके मौजज़े कैसे होते? आईफोन वाले और न्यूक्लियर किस्म के। क्यों? जो जिस मुआशरे में लोगों के जहनों पर बैठा होता है ना, ऐसे होता है, पता चलता है हजरत दाऊद के उसे कैसा आईफोन है, आप इधर से बोले तो आपकी अम्मी पाकिस्तान से उसमें से निकल के आ गई और आप वहां से धड़ाल से वहां से इंडिया पहुंच गई, और जहाजों को आपको लेने की जरूरत नहीं, सारी जहाज कंपनियां बेकार हो जाती हैं और पता चला वो आईफोन के थ्रू ही आई प्लेन कोई बना रहे हैं, कुछ भी है। तो अल्लाह ताला कौमों को मशहूर करने के लिए कि देखो दीन वाले नकम्मे नहीं होते, बेकार नहीं होते। फिर यहाँ वही आवाज़ आ जाएगा जो पीछे हमने सूरत अंबिया में इनके तज़किरे पे हमने डिटेल से बात की थी, कि जब दुनिया के रिसोर्सेज दीन वालों के हाथ में आएंगे तो आज भी ये सारे मौजज़ात होंगे। आइए देखते हैं कि यहाँ इनकी कहानी क्या है। वलकद आतैना दाऊद व सुलेमान इल्मा, पहली नेमत जिसका जिक्र वो इल्म है। दूसरी तरफ हमने दाऊद सुलेमान को इल्म अता किया और उन्होंने कहा, क्या कहा आप और मैं भी कहेंगे यही बात, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फद्दलना अला कसीरिम मिन इबादिहिल मुमिनीन। शुक्र है उस जात का जिसने हमको अपने बहुत से मोमिन बंदों पर फजीलत बख्शी। और दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस सुलेमान बने। उन्होंने कहा, लोगों हमें परिंदों की बोलियां सिखाई गईं और हमें हर तरह की चीजें दी गईं। बेशक ये अल्लाह का बड़ा फजल है। सुलेमान के लिए जिन और इंसानों और परिंदों के लश्कर जमा कर दिए गए और वो पूरे जब्त में रखे जाते थे, यानी डिसिप्लिन थे वो। क्या पता चला कि जब दुनिया की या दीन की कोई नेमत मिले तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, अपने गुण न गाएं, हमने ये किया, हमारी तरक्की, हमारी टेक्नोलॉजी, बल्कि वो दिल के खुशू के साथ अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक जोड़ते हैं। हत्ता इजात उलावाद नमल, एक मरतबा जब वो इनके साथ कूच कर रहे थे, यहाँ तक कि जब ये सब चींटियों की वादी में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा, ऐ चींटियों अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और इनके लश्कर तुम्हें कुचल डाले और तुम्हें खबर भी ना हो। सुलेमान अलैहिस्सलाम इस बात पर मुस्कुराते हुए हंस पड़े और बोले, बड़ी प्यारी सी दुआ है, हम सब पढ़ेंगे, रब्बी औज़ेनी अनशकुर नेमतकल्लती अनमत अलैया व अला वालिदैया व नामल सालेहन तुरदाहू वदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालेहीन। ऐ मेरे रब, मुझे काबू में रख के मैं तेरे एहसान का शुक्र अदा करता रहूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालदेन पर किया, और ऐसा अमल करूं जो तुझे पसंद आ जाए। आमीन तो कह दे, और अपनी रहमत से मुझको अपने सालेह बंदों में शामिल फरमा। हजरत सुलेमान को अल्लाह ने इतनी नेमतें दी कि परिंदों की बोलियां समझते थे, चींटियों की बोलियां समझते थे। सोचिए कितनी तरक्की की थी उस दौर में साइंस ने। आज हमें भी चींटियों से थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए अपनी सांसों की गिफ्तें करते हुए। पता चला वो जाके पर बजा के वहां चली गई। तो यहाँ चींटी का जिक्र है, ये भी अल्लाह की एक अजीब मखलूक है। चींटी और टीम वर्क, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। कोई चींटी तनहा जिंदा नहीं रहती, अपनी टीम के साथ चलती है, अपने परों को बजाकर आपस में बातें करती हैं। आम दर्जे की चींटी 3 से 4 जुबानें जानती है। आप कितनी जानते हैं? बाय द वे, बड़ी जंगजू होती है, हमले करती है, बाकायदा जंग करती है, अपने दुश्मन के ऊपर एसिड फेंकती है और उसको जो हलाक करती है या बेहोश करती है। बास चींटियां गुलाम चींटियां होती हैं, और जो मेल चींटी है उसका सिर्फ एक ही काम है, यानी चींटे का एक ही काम है, और वो क्या है कि वो मेटिंग के बाद मर जाता है। सारा काम फीमेल चींटियां करती हैं। इनकी हिस्से इतनी तेज हैं, घर इतने खूबसूरत बनाती हैं। इस पर एक पूरी बुक है, दी एंट्स के नाम पर, हारून जाजा साहब की, कि जिसके अंदर बच्चों के तौर पे उन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ है। फिर अपने लीडर को फॉलो करती हैं। चींटियों के अंदर वर्कर चींटियां भी होती हैं और इसी तरह क्वीन चींटी भी होती है, और इस तरह से फिर कामों को करती हैं कि मिल के करती हैं। आप देखिए कि एक चीनी का दाना आप कहीं छोड़ें, थोड़ी देर में देखेंगे 6-7 चींटियां उसको पकड़ के दूर लेती हैं। कभी अकेले बैठ के नहीं खाती हैं, अपनी टीम के साथ जाके बैठ के खाती हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि ये भी अल्लाह की मखलूक है। जब इसको अल्लाह का इतना पता है तो मुझे और आपको इससे कितना ज्यादा पता होना चाहिए। अब एक और मंजर है हजरत सुलेमान की सल्तनत के अजीम होने का, कि परिंदों में से हुदहुद की बात सुनने लगे। एक मौके पर सुलेमान ने परिंदों का जायजा लिया और कहा, क्या बात है कि फलां हुदहुद को मैं नहीं देख रहा, क्या वो कहीं गायब हो गया? मैं इसे सख्त सजा दूंगा या इसको जिबाई कर दूंगा, वरना इसे मेरे सामने माकूल वजह पेश करनी पड़ेगी। अब आप जरा सोचिए, सुलेमान एक उस्ताद है और हुदहुद एक तालिब इल्म है, तो उस्ताद के क्या क्या इख्तियार आते हैं? जिबा तो नहीं कर सकते, उससे पहले बहुत कुछ और करना होता है। पूछ तो सकते हैं ना कि कल आप कहाँ थे, हक होता है कि नहीं होता? जी बिल्कुल। फिर उसके बाद फरमाया, कुछ ज्यादा देर ना गुजरी कि उसने आकर कहा, मैंने वो मालूमात हासिल की हैं जो आपके इल्म में नहीं है। यानी तालिब इल्म भी अच्छा था कि ना आने की अच्छी अप्लीकेशन दे रहा है, क्या है अ साउंड रीजन टू फॉर नॉट कमिंग। ये नहीं है कि सिर्फ प्लम्बर के आने की वजह से मैंने छुट्टी कर ली, मेरे पास बहुत बड़ी वजह है। खैर क्या कहा? कहा कि मैं सबक के मुतालिक यकीनी इत्तला लेकर आया हूँ, यानी सच बोलना चाहिए स्टूडेंट्स को, और एक ऐसी यूनिक खबर लेकर आया जो हज़रत सुलेमान के लिए भी बड़ी नई थी। मैंने वहाँ एक औरत देखी जो इस कौम की हुक्मरान है, इसको हर तरह का सरो सामान बख्शा गया है और इसका तख्त बड़ा अजीम शान है। मैंने देखा कि वो और उसकी कौम अल्लाह के बजाय सूरज को सजदा करती है। शैतान ने इनके अमाल इनके लिए खुशनुमा बता दिए और उन्हें सीधे रास्ते से रोक लिया, और इस वजह से वो सीधा रास्ता पा नहीं रहे। क्या पता चला? परिंदे को हैरत हो रही है किसी जगह शिर्क देखकर। आज हमारे शिरकिया काम देखकर पता नहीं कितने परिंदे हैरान होते होंगे। आपको पीछे पड़ चुके सूरत बनी इसराइल में कि हर परिंदे को भी अपनी तस्बीह का तरीका मालूम है। तो याद रखिए, परिंदे हों, जानवर हों, कैटल्स हों, कोई भी हों, सब अपनी तबीयत के साथ मवाहिद हैं। उनको पता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इंसान जब शिर्क करता है अकल रखने के बावजूद, तो परिंदों को उस पर हैरत होती है। फिर दूसरी बात इसमें क्या पता चली? तो हजरत सुलेमान के पास ये जो दुनिया का इल्म था, तो ये कोई बुरा इल्म नहीं होता। देखिए, दो चीजें होती है, एक सेक्युलर नॉलेज होता है और एक सेक्रेट नॉलेज होता है। जब इन दोनों को जमा कर दे जाते हैं तो इंसानियत को नफा मिलता है। दीनी तालीम और दुनियावी तालीम जब इकट्ठी हो जाती है तो लोगों को खैर मिल जाती है। खैर, मलका सबा की कहानी कंटिन्यू होती है। फरमाया, ला यस्जुदु लिल्लाहिल्लज़ी युख्रिजुल हब्ब फिस्समावाति वल अर्ध। किस बात पर उसका हाल था? कहने लगे, वो सीधा रास्ता नहीं पाते कि इस खुदा को सजदा करें जो आसमान और जमीन की पोशीदा चीजें जान निकालता है। वो सब कुछ जानता है जिसे तुम लोग छुपाते हो और जाहिर करते हो। अल्लाह के जिसके सिवा कोई मुस्तहिक की इबादत नहीं, वो अर्श अजीम का मालिक है। सुलेमान ने कहा, अच्छा अभी हम देख लेते हैं कि तूने सच कहा है या झूठ बोलने वालों में, यानी तेरा यूजर सच्चा नहीं। घर फोन करके चेक करेंगे क्या मजबूरी थी। इससे बहुत अच्छी बात पता चलती है कि कोई भी खबर आए, आजकल खबर तो एक व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आ जाती है, ईमेल में आती है, तो उसको जरा सा सोचिए, इज इट ट्रू और नॉट। आप उसको फौरन आगे से क्लिक करेंगे तो हजरत मुसलमान ने कहा, नहीं, मैं पहले रिसर्च करूंगा कि जो बात आपने कही वो सच है कि नहीं। कैसे रिसर्च की, यानी उनका इम्तिहान कैसे लिया? फरमाए, सब भी किताबी हाजफल इलैहिम थुम्मा तवल्ला अन्हुम फंजुर मा सयरजिऊन। मेरा ये खत ले जा और उसे इन लोगों के सामने डाल दे, फिर अलग हट कर देख कि वो क्या रद्द अमल जाहिर करते हैं। सुभान अल्लाह, कितनी समझ दी थी अल्लाह ने हजरत सुलेमान को। खैर, अब खत पहुंचते हैं। बीच की डिटेल्स कुरान ने छोड़ दी कि कैसे गया, कबूतर के जरिए गया या कहाँ गया। ये हुदहुद के जरिए से, शायद कबूतर हमारे कल्चर में मशहूर है खाते इधर से उधर ले जाने पे, और पहले दौर की ईद कार्डों पे भी बना होता था, कबूतर की चोंच में एक कार्ड है और उस पे लिखा हुआ ईद मुबारक। अब कबूतर से पहले व्हाट्सएप पहुंच जाता है और ई मैसेजेस पहुंच जाते हैं। अब मेरा तो ख्याल है कार्ड बनाने वालों का बिजनेस ही खत्म हो गया होगा जितने अब लोग ई बिजनेस पे आ गए। तो बहरहाल वो मलका के पास खत पहुंचा। ये सारा चिपड़ते हैं, फिर इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। खत मलका के पास पहुंचता है। मलका बोली, अहले दरबार, मेरी तरफ एक बड़ा अहम खत फेंका गया। वो सुलेमान की जानिब से और अल्लाह रहमान और रहीम के नाम से शुरू किया गया। मजमून जो है कि मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो और मुस्लिम होकर मेरे पास हाजिर हो जाओ। यहाँ हाईलाइट कर लीजिए आयत नंबर 30 को, ये यूनिक आयत है कि इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखिए। इसीलिए कुरान पाक में 114 सूरतें हैं, सूरत तौबा के शुरू में बिस्मिल्ला नहीं है, इसके बावजूद 114 ही बार है, क्योंकि सूरत नमल में दो बार है। यहाँ से आपको पता चलेगा ये कितना पुराना कलमा है। और आपने फरमाया कि मुझसे पहले सुलेमान के अलावा ये कलमा किसी और को सिखाया नहीं गया। और कितना दो टोक खत है हजरत सुलेमान का, सीधी सीधी बात कि मुस्लिम हो जाओ। खुद बादशाह थे ना, तो बादशाह यानी एक मलका को मैं तबलीग कर सके। आज उम्मत मुसलमा के मुसलमान हुक्मरानों का फर्ज बनता है कि दूसरे इस्लाम से दूर हुक्मरानों को अच्छे तरीके से इस्लाम की दावत। खत सुनाकर मलका ने कहा, सरदाराने को मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो, मैं किसी मामले का फैसला तुम्हारे बगैर नहीं करती। यहां से पता चलता है कि डिक्टेटरशिप नहीं थी उसके पास, वो शूरा कायम करके लोगों को साथ लेकर चलती थी और ये अकलबंदी की बात थी उसकी, तभी तो हिदायत भी मिल गई ना। उन्होंने जवाब दिया, हम ताकतवर और लड़ने वाले लोग हैं, आगे फैसला आपके हाथ में है, आप खुद देख लें आपको क्या हुक्म देना। मलका ने कहा, बादशाह जब किसी मुल्क में घुस आते हैं तो इसे खराब कर देते हैं और इसके इज्जत वालों को जलील कर देते हैं, यही कुछ वो भी किया करेंगे। मैं इन लोगों की तरफ एक हदिया भेजती हूँ, फिर देखती हूँ कि मेरे भेजे हुए यानी एम्बेसडर्स क्या जवाब लेकर पलटते हैं। यानी अक्लमंद थी, दुनियावी हिसाब से बहुत अच्छे मेयर्स ले रही है, इसी तरह आज बहुत सारे लोग दुनियावी तौर पर बहुत अक्लमंद है, कुफर के साथ मदे चिला रहे हैं, लेकिन अल्लाह को क्यों नहीं पाते? क्योंकि इल्म नहीं था। आज भी कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास इल्म नहीं है, इसकी वजह से वो जीनियस होने के बावजूद मलका सबा की तरह हिदायत से दूर थे। तो मुझे और आपको छुट्टी की जरूरत नहीं है, अभी काम बहुत है, वक्त फुर्सत है, कहाँ काम अभी बाकी है, नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। आप अपने इर्द गिर्द ऐसे भोले भाले सीधे सीधे लोगों को ढूंढिए जो मलका सबा की तरह बहुत अच्छे नाइस समझदार हैं, उनके दिल में इस्लाम से दुश्मनी नहीं, लेकिन सिर्फ इल्म की कमी की वजह से अभी तक वो ये काम नहीं कर सके। खैर, अब मलका अपना खत भेजती है और यहां से पता चला कि हर तोहफा जो होता है वो तोहफा नहीं होता, बास तोहफे आजमाने के लिए भी दिए जाते हैं। वो मलका का सफीर सुलेमान के पास पहुंचा तो इसने कहा, क्या तुम लोग माल से मेरी मदद करना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझको दे रखा है वो इससे बहुत ज्यादा है जो तुम्हें दे रखा है। यानी हजरत सुलेमान लालची बादशाह नहीं थे कि दूसरे मुल्क के खजानों पे भी अपनी नजरें रखें, बल्कि कहा मुझे तुम्हारे तोहफे नहीं चाहिए, तुम्हारे तोहफे तुम्ही को मुबारक हो। ऐ सफीर वापस जाते भेजने वालों की तरफ, हम इन पर ऐसे लश्कर लेकर आएंगे जिनका वो मुकाबला ना कर सकेंगे और हम इन्हें इसी जिल्लत के साथ वहां से निकालेंगे कि वो ख्वार होकर रह जाएंगे। दुआ कीजिए आज उम्मत मुस्लिमा के बादशाह और बड़े बड़े लीडर यही टोन रखें, नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल। एक किस्म से आप, सच्ची बात है, मैं अगर इसको अपने लफ्जों में कह दूं तो मलका ने एड ऑफर की और हजरत सुलेमान ने कहा थैंक यू वेरी मच, अभी हमारे अल्लाह के पास बहुत कुछ है, वी डोंट नीड योर एड। आज उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरान अगर इसको एक्सेप्ट कर लें तो हमारी हालत तो जो सदियों में बदलनी है ना, इंशाल्लाह चंद सालों में बदलेगी। जब तक किसी से लेकर खाते रहेंगे आप उसे दबते रहेंगे, लेने वाला हाथ देने वाले हाथ से हमेशा नीचे ही होता है। इसलिए आज का एक बहुत बड़ा मसला यही है कि हमारे हुक्मरानों में ये अना नहीं है। वही हजरत उमर का वाकया याद कर लीजिए कि जब किसी गैर मुस्लिम बादशाह से मांग ली मदद तो उसने सामान भेजा भी लेकिन कुछ बुरी नहीं पड़ी। किसी बद्री साहबी के ख्वाब में अल्लाह के नबी नजर आए और उन्होंने कहा उमर को क्या हो गया? उमर को गम लग गया, मुझे क्या हो गया? पता चला कि उमर आपने सलातुल इस्तिस्का तो पढ़ी नहीं और गैर मुस्लिम हुक्मरान से मदद मांग ली। चलो निकलते हैं, खुले मैदान में गए, जाके बारिश की दुआ की, जल थल हुआ, सारा कह दूर हो गया। आज उम्मत मुस्लिमा कोई गरीब उम्मत है? हम मांगते हैं, सोच सोचिए, आप और मैं अपने ऊपर लेकिन इंफरादी तौर पर सोचे, क्या मांग के कपड़े पहनते हैं? ये जो कपड़े हमने पहने हुए ये भीग के कपड़े हैं जी, उस गाड़ी में हम बैठे कि हम किसी से कहते हैं जरा गैस तो थोड़ी डला दो, कितनी अना है हमारे अंदर। अल्लाह ना करे कभी हम अपनी बेसिक नीड्स के लिए किसी के आगे हाथ फैलाएं। तो क्या एक उम्मत होने के नाते हम इस सबक को भूल गए? ये वजह आज हमारे वी आर सॉरी टू बी मुस्लिम के, हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। और आप कहते हैं कैसे होगा, सब अपने माल दौलत जमा करके एड उतार दें। जिस दिन आपने एड उतार दी आपने गुलामी का फंदा उतार दिया। आप कहते हैं कैसे उतारे, वो तो उनसे नहीं जाएगी तो हमारे हुक्मरानों के घर में चली जाएगी। तो क्या करें, इसलाह करें, जाहे तुम भी ही जिहादन कबीरा। अमीर का भी हक है कि उसको कुरान पहुंचे, तो गरीब का भी हक है उसको कुरान पहुंचे। इसी तरह हुक्मरानों के लतीफे बनाने और उनके जोक बनाने के बजाय उनको कुरान भेजिए कि आप भी कुरान समझिए, पढ़िए, सुनिए, आखिर वो भी तो इंसान है, माओ के बेटे हैं, बीवियों के शौहर हैं। क्या उनको आग में भेजना है मैंने और आपने? क्या आप और मैं इस चीज का इंतजार करते रहेंगे कि वो जहन्नुम में जाएं या तख्तों पे चढ़ें और उनसे इख्तिसाब लिया जाए? क्या मैं और आप ऐसा प्रेशर ग्रुप नहीं बना सकते कि वी नीड कुरान एजुकेशन? क्या हम गैर जरूरी मुतालबा कर रहे हैं? तो दुआ कीजिए कि कहीं ना कहीं हमारी आवाज पहुंच जाए और हम इस किताब को दुनिया के हर हित्ते तक आम कर सकें। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह रस्म डाल दी कि वो एक नॉन मुस्लिम के तोहफे को वापस कर दिया इस सोच के साथ, क्योंकि वो लालच देखना चाह रहे थे। पैसे तो अल्लाह के नबी ने गैर मुस्लिमों से भी तोहफे लिए थे, मुराद जहां यह है कि दबना नहीं है बल्कि उनको मुकाबले की दावत दे दी। अब क्या हुआ, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा अहले दरबार तुम में से कौन इसका तख्त मेरे पास ले आता है कबल इसके कि वो लोग मती होकर मेरे पास आ जाए? जिन्हों में से एक कवि हैकल ने अर्ज किया मैं इसको हाजिर कर दूंगा कबल इसके कि आप अपनी जगह से उठें, मैं इसकी ताकत रखता हूं और अमानतदार भी हूं। जिस शख्स के पास किताब का एक इल्म था वो बोला मैं पलक झपकने से पहले इसे लाए देता हूँ। जैसे फैक्स आती है, यहां से देखिए उस दौर में कितनी तरक्की की हुई थी साइंस ने। पलक झपकने में कहां से उसका तख्त उठाकर हजरत सुलेमान के दरबार में आ गया। और आज आपको तक इसी तरह की कोशिशें फिर की जा रही हैं, टेली कम्युनिकेशन के नाम पर एक टेक्नोलॉजी आ रही है आगे कि जिसमें कहते हैं कि लोग अपनी चीज इधर रखेंगे, मसलन ये टिश्यू का डब्बा है आप इसको इंडिया भेजना चाहते हैं, उस मशीन के आगे आप उसको रखेंगे, वो मशीन इसके ऊपर एक कुछ रेस फेंकेगी, इधर ये डब्बा जल जाएगा खत्म, और इंडिया में ऐसा बिल्कुल एक डब्बा प्रोड्यूस होकर उन तक पहुंच चुका होगा। अब आज आपको हैरत होती है तो टेलीफोन और दूसरी चीजों पे हैरत उस वक्त लोगों को होती थी जब ये नहीं हुए थे। कैसे एक तार के साथ, मैं सोचती थी एक तार इतनी लंबी कैसे है कि यहां भी लगी हुई और अमेरिका में उसका सिरा गया। फिर जब कॉर्डलेस फोन आए वायरलेस तो और भी परेशान हो गए कि इसमें तो तार भी कोई नहीं। तो अब तो देखिए आप यहां बोलिए सारी दुनिया में बात है, तो क्या वक्त के साथ ये नहीं होगा? साइंस की तरक्की होगी, दुआ कीजिए मुसलमानों के हाथों से, ये
आमीन।
दुआ करें कि अब अगले दौर के साइंटिस्ट हमारे मुसलमान बच्चे हों, नाम हर जगह मुसलमानों का आ जाए, फिर देखिए अल्लाह ताला उनकी इज्जत कितनी बनाता है। खैर, जिस शख्स के पास एक किताब का इल्म था कहने लगा मैं पलक झपकने में इसको ले आता हूँ। जो कि सुलेमान ने वो तख्त अपने पास रखा हुआ देखा तो पुकार उठे हाज़ा मिन फ़ज़्ली रब्बी। कितना खुशी हुई उनको कि हाय अल्लाह इतनी जल्दी वो मेरा काम हो गया, का ये अल्लाह का फजल है। ये होते हैं खुद आजिज़ दिल, ये नहीं कहा देखा हा 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 हम सुपर पावर, हम कितने रिसोर्सफुल, हमारी CID नहीं, का ये है तो फजल अल्लाह का लेकिन मिला क्यों, इसको हाईलाइट कीजिएगा, यही हर नेमत का असल है हमारी। लिया ब्लूवनी अशकुरु अम अकफुर, क्यों दी अल्लाह ने मुझे, ताकि वो आजमा ले मुझको कि मैं शुक्र करता हूँ या काफिर नेमत बन जाता हूँ। वो मन शकरफा इन्नमा यशकुरु लिनफ्सी, और जो कोई शुक्र करेगा वो तो अपने ही नफ्स के लिए शुक्र करेगा, किसी का क्या फायदा होगा, वरना कोई ना शुक्री करे तो मेरा रब नियाजर अपनी जात में आप बुजुर्ग है। अल्लाह में भी शुक्र गुजार बना दे। सुलेमान ने कहा अनजान तरीके से इसका तख्त इसके सामने रख दो, देखें वो सही बात तक पहुंचती है या इन लोगों में से जो राह रास्त नहीं पाते। मलका जब हाजिर हुई तो इससे कहा गया क्या तेरा तख्त ऐसा ही है? वो कहने लगी ये तो गोया वही है, हम तो पहले ही जान गए थे और हमने सरे इताअत झुका दिया, यानी हम मुसलमान हो चुके थे। इसको ईमान लाने से किस चीज ने रोका था सिवाय उन बुतों की इबादत थी जिन्हें वो अल्लाह के सिवा पूजती थी, क्योंकि वो एक काफिर कौम में से थी। यहां आप देखिएगा तकाबुल, पीछे मूसा का जिक्र बार बार पड़ा फिरौन का। फिरौन के पास मूसा खुद पहुंचे जो एक रसूल थे तो फिरौन नहीं माना, मलका के पास खुद खुद गया, सुलेमान खुद नहीं गए तो मान गई। फर्क किस बात का है? फिरौन की नजर पैगाम बर पर थी और मलका की नजर पैगाम पर थी। दूसरी बात, फिरौन के दिल में तासुब था, मलका तासुब से पाक थी। आज भी यही चीज मेरे और आपके लिए अमल की है। कितने ही ऐसे खूबसूरत लोग आज कुफर की गंदगियों में फंसे हुए हैं कि जिनको सिर्फ चिराग दिखाने की जरूरत है इस्लाम का, तो वो भड़कने को तैयार है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं हमारी गफलतों के पर्दे चाक करें। अब मलका मुसलमान हो गई, अब हजरत सुलेमान दिखाना चाहते थे कि मुसलमान कोई कमजोर लोग नहीं होते, वो भी बड़े अच्छे काम करते हैं। कैसे दिखाया? यानी डिस्प्ले किया, जिसको आप कह लीजिए कि असलहे का इजहार किया या मुसलमानों की तरक्की को जाहिर किया। इससे कहा गया महल में दाखिल हो जाओ, इसने जो देखा तो समझी के पानी का हौज है, और उतरने के लिए इसने अपने पांचे उठा लिए। सुलेमान अलैहि सलाम ने कहा ये शीशे का चिकना फर्श है। इस पर वो पुकार उठी रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी वअस्लमतु मा सुलेमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मेरे रब, आज तक मैं अपने नफ्स पर बड़ा जुल्म करती रही और अब मैंने सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत कबूल कर ली, यानी मुसलमानों की तरक्की देख कर मान गई कि मैं छोटी थी। आज भी अल्लाह करे ऐसा ही हो जाए अगर हम जाग जाएं तो। और समूद की तरफ हमने इनके भाई सालेह को यह पैगाम देकर भेजा कि अल्लाह की बंदगी करो, तो यकायक वो दो झगड़ने वाले गिरोह बन गए। सालेह अलैहि सलाम ने कहा मेरी कौम के लोगों, भलाई से पहले बुराई के लिए क्यों जल्दी मचाते हो, क्यों नहीं अल्लाह से मगफरत तलब करते, शायद के तुम पर रहम फरमाया जाए। उन्होंने कहा हमने तो तुमको और तुम्हारे साथियों को बदशगुनी का निशान पाया। सालेह ने जवाब दिया तुम्हारे नेक और बदशगुन का सरिश्ता तो अल्लाह के पास है, असल बात है कि तुम लोगों की आजमाइश हो रही है। इस शहर में 9 जत्थेदार थे जो मुल्क में फसाद फैलाते और कोई इसलाह का काम न करते। उन्होंने आपस में कहा कि अल्लाह की कसम खाकर अहद कर लो कि हम साले और इसके घर वालों पर रात के वक्त हमला करेंगे, फिर इसके वली से कह देंगे कि हम इसके खानदान की हलाकत के मौके पर मौजूद न थे। हम बिल्कुल सच्चे हैं, ये चाल तो वो चले और एक चाल हमने चली जिसकी इनको खबर भी ना थी। अब देख लो इनकी चाल का अंजाम क्या हुआ, हमने तबाह करके इनको रख दिया और इनकी बुरी कौम को, वो इनके घर खाली पड़े हैं। इस जुल्म की पादाश में जो वो करते थे, इसमें एक निशाने इबरत है इन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं, और बचा लिया हमने इन लोगों को जो ईमान लाए थे और نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے. مکہ میں اللہ کے نبی کے قتل کی کوششیں تھیں, یہی خبریں سنائی جا رہی ہیں. ڈونٹ وری, جس رب نے حضرت صالح کو ان کے قتل کے عملوں سے بچا لیا وہ آپ کو بھی آپ کے دشمنوں سے بچائے گا. اور لوط کو ہم نے بھیجا, یاد کرو وہ وقت جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا, کیا تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو؟ کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کرتے ہو؟ آپ دیکھ رہے ہیں شاید ہی کوئی پارا خالی گزرے جس میں یہ موضوع نہ آئے. قوم لوط کے ناطے سے ہی صحیح, لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو یہ بات خبر تھی کہ ایک دور میں یہ سب سے بڑا ایشو بن جائے گا انسانوں کے لیے, اور آج وہی دور دکھتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری نسلوں کو اس سے بچا کے رکھے. فرمائے, حقیقت یہ کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو. جس کو لوگ آج لیگل کر رہے ہیں اللہ اس کو جہالت کا کام کہتے ہیں. مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا, نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے. تھریٹننگ, یہ بڑے پاک باز لوگ بنتے ہیں. آخر کار ہم نے بچا لیے اس کو اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے, جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا. اور برسا ان لوگوں پر ایک برسات, بہت بری برسات تھی وہ ان لوگوں کے حق میں جو وارن کیے گئے, جو ڈرائے گئے. اور آخر میں پھر اللہ کے نبی کو پارے کے کیا کہہ دیا, قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہ خیر اما یشرکون. اے نبی کہو, حمد اللہ کے لیے ہے اور سلام اس کے نیک بندوں پر جن کو اس نے چن لیا. ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جن کو وہ اللہ کا شریک بنا رہے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے. آپ آگے دیکھیں گے, پارا نہ شروع ہو رہا ہوتا تو ساتھ ہی پڑھ دیتی کہ جس کے اندر جواب لکھا ہوا اس سارے سوال کا. چونکہ آج کا ٹارگٹ اتنا ہی تھا اس لیے یہاں رکیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.